देवियों सज्जनों, आप सबको नए वर्ष की दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो नए वर्ष के दिन हमारे यहाँ बहुत बड़े आकार में हवन होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। जो नहीं आए थे उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां। आपके लिए ये पूरा साल शुभ हो, अच्छा हो, खुश रहें, अपनी समस्याओं से दूर रहें। आज के जो विषय है गीता के 17वें अध्याय का अंतिम भाग है, मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुराः। पिछली बार हमने थोड़ी चर्चा की थी, ओम तत्सत ये तीन शब्द हम हर कार्य से पहले उच्चारण करने की परंपरा रही थी, इसीलिए ओम ईश्वर का नाम है। हमने डिटेल में चर्चा की, आउ मां तीन अक्षरों से बना, और जो चौथा इनविजिबल लेटर है, इन चारों अक्षरों से मिला हुआ ओम ईश्वर के जितने भी गुण कर्म स्वभाव है, न केवल ईश्वर के, इस संसार के भी जितने तरह के अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग लेबल्स हैं, और न केवल इतना, इवन हमारे इंडिविजुअल लाइफ में भी जो अलग अलग लेबल्स हैं, उन सबको डिस्क्राइब करता है ये छोटा सा ओम सिलेबल। और बेसिकली ओम का नाम है ओम तत्सत। तत् मतलब दैट, सत् मतलब ट्रूथ, सच। सच क्या किसको कहते हैं? जो एग्जिस्ट करता है उसी को सत कहते हैं। सत का रियल मीनिंग सच नहीं होता, ट्रूथ नहीं होता। सत का संस्कृत में रियल मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस, बिकॉज एनीथिंग व्हिच एग्जिस्ट दैट इज कॉल्ड ट्रूथ। सो इसलिए ट्रूथ का भी वो सिनोनिमन बन गया सत्य का। तो जो वो जो सच है, ये वो क्यों, वो बोल सकता था वो ब्रह्म सत है, ईश्वर सत है, ऐसा ना बोल के तत् सत क्यों? हमने पहले भी चर्चा की, क्योंकि ईश्वर का कोई नाम नहीं हो सकता। जो भी आप उसके लिए नाम देते हैं, हजारों सैकड़ों नाम अलग अलग भाषाओं में है, इवन हमारे जिस भाषा से हमारे सारे शास्त्र लिखे गए संस्कृत में, उसमें हजारों लाखों नाम है ईश्वर के, पर वो सब कोई ना कोई ईश्वर के इंडिविजुअल कैरेक्टर को, उसके उसकी क्वालिटीज को, उसके एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करते हैं। होलिस्टिक वे में आप नहीं, जब आप कहते हैं ईश्वर, तो ईश्वर मतलब रूलर होता है, जो रूल करता है, क्योंकि वो सारे संसार को रूल करता है, इसीलिए ईश्वर है। और राजा महाराजे आपके छोटे छोटे देशों को रूल करते हैं, वो भी ईश्वर ही कहलाते हैं, और आपके घर का जो स्वामी होता है वो भी ईश्वर ही कहलाता है। अभी मिडिएवल एज में आज भी बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि पति जो है, पत्नी का क्या है, परमेश्वर है, पति परमेश्वर, वो ईश्वर रूल करने वाला। तो जो कोई रूल करे वो ईश्वर है। तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा राजा भी भगवान हो गया। इसी तरह कोई भी शब्द आप लेते हैं, तो वो ईश्वर का कोई एक गुण को डिस्क्राइब करता है, जो बाकियों में भी हो सकता है, जो उन सब गुण कर्मों से परे है, जिसको डिस्क्राइब करना पूरी 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 तरीके से असंभव है, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। उपनिषद में श्वेत केतु एंड उद्दालक गुरु हैं, पिता भी हैं, और उनके गुरुकुल में पुत्र श्वेत केतु, जो कि शिष्य के रूप में है, रहता था, और बहुत ही मेधावी था, बहुत टैलेंटेड था, ब्रिलियंट था, और फ्यूचर बहुत उसका ब्राइट था। 14-15 साल पढ़ने के बाद, गुरुकुल में पूरी मास्टर डिग्री करने के बाद, उसके ज्यादातर जो साथी थे वो पास करके उनका, जिसको हम कहते हैं समावर्तन संस्कार, जिसको आप कन्वोक ग्रेजुएशन कहते हैं, सब करके निकल चुके हैं। अरे इसका नंबर ही नहीं आ रहा है श्वेत केतु का। तो उसने एक दिन जाकर गुरु से बोला कि मेरे सारे साथी पास होकर के जा चुके हैं, और आप उस समय गुरु जी खुद बोलते थे कि भाई तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, तुम पास कर गए, तुम जा सकते हो। उसका पर्टिकुलर संस्कार होता था सेरेमनी। श्वेत केतु का नंबर नहीं आ रहा है, उसके नीचे वाले नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे भी जा चुके हैं। तो उसने बोला कि आप मुझे, मैंने तो सब कुछ सीख लिया, पढ़ लिया, जान लिया, और क्या बचा, मेरा भी कर लीजिए ग्रेजुएशन, मैं जाऊं। गुरुजी ने कहा तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम सब कुछ सीख चुके हो? क्योंकि जनरली क्या होता है गुरु शिष्य परंपरा में, जो बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ता है वो गुरु लोग भी उसी को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा निचोड़ा जा सकता है, उसको और ज्यादा पॉलिश किया, उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें पोटेंशियल है, उसको अगर एवरेज बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए उसका वो पोटेंशियल खत्म हो जाता है। प्राचीन काल में भी ये सिस्टम था, गुरु लोग जो बहुत ज्यादा मेधावी होते थे उसको सबसे ज्यादा स्क्वीज करते थे, निचोड़ते थे। तो उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जान चुके हो? बोले अब क्या जा पूछना है, पूछ लो जो पूछना है। बोले ठीक है, पहले से शुरू करते हैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन से, बताओ कस तुम, इसका मतलब होता है तुम कौन हो। तो श्वेत केतु ने कहा कि श्वेत केतु रहम, मैं श्वेत केतु हूं। बोले मैं यही तो पूछ रहा हूं श्वेत केतु कौन है। उसने बोला मैं हूं, यही तो पूछ रहा हूं कि तू कौन है। बोला मैं श्वेत केतु हूं। अरे बेवकूफ, यही पूछ रहा हूं वो श्वेत केतु कौन है। श्वेत केतु का आंसर बिल्कुल एक एवरेज इंसान की तरह ही था, जो अपने आप को श्वेत केतु कहता था, पर सवाल है कि वे नहीं जानता है कि तुम मैं, वो अपने आप जिसको कह रहे हो वो कौन है। तो गुरुजी ने खुले में पूछा, अच्छा चलो तुम जिसको मैं कहते हो, मैं श्वेत केतु हूं, ये शरीर है श्वेत केतु? नहीं, ये तो नहीं, ये तो मेरा शरीर है, इट्स माई, इट्स नॉट मी। प्रॉब्लम आम लोगों में यही है, मी और माई में कंफ्यूजन हो जाता है, जिसको मैं मी कहता हूं वो सब माई है। तो यही तो पूछ रहा हूं, ये शरीर है तुम? नहीं, ये तो मेरा शरीर है। फिर तू कौन है? ये सर है, ये तो मेरा सर है। तो तुम मन हो? नहीं, ये तो मेरा मन है। तो तुम बुद्धि हो? ये तो मेरी बुद्धि है। फिर तू कौन है? ये तो कभी सोचा नहीं। फिर क्या पढ़ाई करोगे? जिसको अपना नाम तक नहीं आता, अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आता, क्या करता है? जाओ और सीखो। पहले जमाने में आजकल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरह रटू तोता नहीं बनाते थे, शिष्य को अपने आप फाइंड आउट करना पड़ता था सोल्यूशन, गुरु सिर्फ हेल्प करता था। सालों बीत गए, श्वेत केतु अपना जो भी ट्राई करता हुआ, करते करते सालों बीत गया, कुछ समझ में नहीं आया, वापस आया गुरु के पास। गुरु ने बोला अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ क्लू दे सकता हूं। उसका क्लू था तत्त्वमसि, त्वम मतलब यू, तत् मतलब दैट, असि मतलब आर, यू आर दैट। हमारे आपके लिए शब्द होगा ठीक है, यू आर दैट। ये बड़ी गहरी रहस्य का शब्द था गुरु के लिए, और श्वेत केतु ही उसको समझ सकता था। दैट हम वहीं यूज करते हैं, वो हम वहीं यूज करते हैं जहां नाम रूप नाम नहीं दे सकते। आप किसको नाम देते हो? जिसको जानते हो। ये एक फोन है तो इसको आप जानते हो तो इसका नाम आपने फोन दिया। ये पेपर है, इसको आपने जाना तो पेपर दिया। दुनिया में करोड़ों चीजें ऐसे हैं जिनको अभी तक हमने नहीं जाना, तो नहीं जाना तो उनका कोई नाम भी नहीं है। नाम सिर्फ उन्हीं चीजों का होता है जिसको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते उनका कोई नाम नहीं होता है। नाम एक आर्टिफिशियल मैन मेड चीज होता है, और वो वही होता है जिसको हम जानते हैं। तुम जहां तक जान सकते हो उसका एक नाम होगा, रूप होगा, रस होगा, गंध होगा, स्पर्श होगा, और जो तुम नहीं जानते हो वो सब प्रोनाउन में यूज होगा, दैट दिस। और जिसको तुम कभी जान ही नहीं सकते हो, क्योंकि जानने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे सेंसेस है, और उसका अपना लिमिटेशन है, इंद्रियां है, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को जान सकते हैं जिन जो चीजें उन्हीं मैटेरियल से बने हुए हो, जिन मैटेरियल से सेंसेस बने हुए हैं, अब दैट इज मैटर। इसीलिए जिसको तुम अपने इंद्रियों से जान नहीं सकते हो, इसीलिए उसका कोई नाम नहीं हो सकता, वो तुम हो। ये फाइंड आउट करना तुम्हारा काम है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम जान नहीं सकते हो, इसलिए उसको कोई नाम नहीं दे सकते हो। श्वेत केतु सालों लगाया साधना में, सीखने में, जानने में, सालों के बाद समझ के आया। तो गुरु ने अंतिम परीक्षा ली, अब बताओ कस्त्वम। तो वो जो प्रसिद्ध वाक्य आप सुनते हैं, तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि, तहम् ब्रह्मास्मि, मैं वो हूं जो व्यापक है। ब्रह्म का मतलब होता है व्यापक, यानी समथिंग विच इज एवरीवेयर, जो फैला हुआ है। तो ये स्टोरी सुनाने के पीछे यही था कि प्राचीन शास्त्रों में भी आत्मा को या परमात्मा के लिए कोई शब्द नहीं होता था। इवन आज हम आत्मा और परमात्मा कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोई शब्द की जरूरत है। वो तत् था, वो जो तत् है, जो इनविजिबल है, इनडिस्क्राइबेबल है, जिसको समझना आसान नहीं है, सिर्फ आप रियलाइज कर सकते हो जब आपका मन पूरी तरह साफ हो जाए, पवित्र हो जाए, किसी भी तरह की कोई गंदगी मन में न रहे, तो आप इसको रियलाइज कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी ऑफ योर सेंसेस। वहां सेंसेस के द्वारा नॉलेज नहीं होता है, जैसे कि बाकी दुनिया को। वो जो परमात्मा प्रभु है, जो बियॉन्ड आवर लिमिटेशन है, सेंसेस की लिमिटेशन है, वो तत् वही सत है, वो सत्य है, ओम तत् सत। इसी भाव के साथ हम सारे कार्य को करते हैं। दोबारा बोलिए, तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। यज्ञ दान तप क्रिया, इन सब की चर्चा हमने पहले की कि हर व्यक्ति कोई भी अच्छा काम करता है, बुरे काम की चर्चा तो उसको काम में काउंट ही नहीं होता है। जो भी अच्छा काम है उसको करने वाले भी तीन तरीके से होते हैं। एक जो सात्विक लेवल का होता है, फर्स्ट कैटेगरी का, जो किसी भी काम को करता है विदाउट कोई सेल्फिश इंटरेस्ट, विदाउट एनी हिपोक्रेसी, फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जब कोई करता है, वो सात्विक होता है, फर्स्ट कैटेगरी का आदमी होता है। वो दान हो, यज्ञ हो, तपस्या हो, अच्छा काम हो, समाज सेवा हो, कुछ भी हम करते हैं। सेकेंड कैटेगरी, जिसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, कुछ पाने की चाहत से करते हैं अच्छा काम, वो नाम हो, यश हो, धन हो, रिकॉग्नाइजेशन हो, जो भी हो, कुछ पाने की चाहत है। और थर्ड कैटेगरी, सिर्फ और सिर्फ अपने को कष्ट देना, दूसरों को कष्ट देना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कुछ समझे बिना, लालच के कारण, मोह इल्यूशन के कारण, डिल्यूशन के कारण, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करके जब हम अच्छे से अच्छे काम भी करते हैं, वो बहुत ही वर्स्ट कैटेगरी का होता है। जैसे हमने सुना कि इवन आप किसी को हेल्प भी करते, वो भी तीन कैटेगरी का होता है। मतलब आप हेल्प करते हुए भी दूसरों का नुकसान कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन। केवल इंटेंशन नहीं, अगर आप रैंडमली करते हो, कुछ समझते नहीं, कुछ नहीं, मुझे देना है, कहीं भी दे आते हो, पता चला आप किसी करप्शन को बढ़ा रहे हो, अनजाने में किसी गलत आदमी को आप प्रमोट कर रहे हो। तो इसीलिए ये तीन तरह के जो यज्ञ दान तपह वगैरह, जो भी अपने आप को अच्छा बनाना, अच्छा काम करते हैं, इन सब अलग अलग तरीके से होते हैं। अब इसको कंक्लूड करते हैं, जो लोग इनको विधि पूर्वक, जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके विधि पूर्वक करते हैं, कोई भी अच्छा काम करने से पहले ईश्वर के नाम लेकर के करते हैं। और प्राचीन काल में ईश्वर को नाम लेने के लिए जो शॉर्टकट फॉर्मेट था वो था ओम, थोड़ा बड़ा करके बोले तो ओम तत्सत, जिसका आजकल आप इधर उधर सुनते होंगे हरि ओम तत्सत। ये हरि तो बाद में जोड़ा, जैसे पिछले संडे को भी हम बात कर रहे थे, हम लोगों की एक प्रॉब्लम है खास करके हिंदुओं की, वो बड़े आसानी से जब तक किसी चीज को डिस्टॉर्ट न कर दे, तोड़ फोड़ ना करें, अपने तरफ से कुछ जोड़ तोड़ ना करें, शास्त्रों को बिगाड़ ना दें, उनको लगता ही नहीं कि मैंने कोई धर्म कार्य किया, कोई अच्छा काम किया। तो हरियम उस एक बिल्कुल जेन्युइन नेचुरल चीज का एक बिगड़ा हुआ फॉर्म विदाउट एनी गुड रिजल्ट। बस करना है कुछ बिगाड़ के रख देना है। हमारे धर्म में जब तक मैं कुछ बिगाड़ ना दूं तब तक मुझे लगता नहीं मैं कोई धर्माचार्य हूं, कोई बाबा हूं, कोई बड़ा महापुरुष हूं। तो इस तरह ये फैला ओरिजिनल ओम तत्सत, इसके साथ हम सारे काम शुरू करते हैं। मैंने पिछली बार इसकी चर्चा की, क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन में हम सिर्फ सोचते हैं जब हम किसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा या बुरा चीज, जीवन में कोई दुख आया, कोई सुख आया, कोई दुख आता है तो भी हम इसको शेयर करते हैं। हमारे घर में कोई मर जाता है, बीमार होता है, तो जो फ्रेंड्स हैं, वेल विशर हैं, फैमिली मेंबर हैं, सब इकट्ठा होते हैं, उसमें भी हम कुछ। इसी तरह कोई अच्छा चीज होता है, बच्चा जन्म होता है, उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, नामकरण करते हैं, कोई भी घर में शादी होती है तो सबको बुलाते हैं। हमारा सुख और दुख हमारा अकेला नहीं होता है, हम सब शेयर करते हैं अपने अपने निजी लोगों से, अपने लोगों से, वेल विशर से, फ्रेंड से, जिनको हम जानते हैं, सबके साथ सुख दुख को शेयर करते हैं। सुख शेयर करने से बढ़ता है, दुख को शेयर करने से घटता है। हम जब इसको शेयर करते हैं उसमें एक चीज ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं कि आपका और एक वेल विशर है जो आपका क्लोज रिलेटिव है, सबसे बढ़िया फ्रेंड है, सबसे बड़ा फैमिली मेंबर है, वो है आपके ईश्वर प्रभु भक्त। वो हम भूल जाते हैं क्योंकि वो इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता और हमें एहसास में नहीं आता, हम भूल जाते हैं। यही हमारे शास्त्रों का, पूर्वजों का कहना है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है, वो तुम देखो, अनुभव करो ना करो, पर उसके नाम के साथ जोड़ करके सब काम करो। जैसे फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट करते हो, वेल विशर को बुलाते रिसीव करते हो, सारे दुनिया भर के लोगों को रिसीव करते हो, ऐसे हर अच्छी चीज की में उस ईश्वर को भी साथ लेकर चलो, क्योंकि वो तुम्हारा अपना है। अगर कोई सबसे ज्यादा तुम्हारा करीब है, क्लोज है, वो तुम्हारा ईश्वर है, वो सबसे क्लोज तुम्हारे अंदर ही रहता है। बाकी कोई रिलेटिव हो वो तो थोड़ा बाहर तो रहता ही रहता है। कोई सबसे ज्यादा तुम्हारा सुख दुख को समझता है वो वही है, सबसे ज्यादा कोई भला करता है वही करता है। इसको छोड़ के मत जाना, और उसके जब नाम लेते हो तो उसका जो सबसे बढ़िया नाम है वो है ओम तत्सत के साथ आप शुरू करें। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ये जो अलग अलग तरह से हमने कोई भी अच्छा काम उसको तीन तरह से बांटने का हमने सुना, अभी दो चार महीने से सुन रहे थे। कोई भी काम करे, कोई भी अच्छा काम या बुरा काम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं हो जाता है। इवन आप किसी को हेल्प करते हैं, सिर्फ हेल्प कर देना अपने मात्र में अच्छा नहीं हो जाता। सोशियली ये अच्छा माना जाता हो, पर तुम्हारे लिए जो तुम जिसके लिए अच्छा काम किया, जरूरी नहीं उसका तुमने जो अच्छा काम किया तो वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए अच्छा हो। ये डिपेंड करता है कि और बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो हर इंसान का अलग अलग होता है, और वो ट्रेनिंग लेने से नहीं होता है, सुनने समझने से नहीं होता है, वो उसका इनहेरेंट नेचर होता है, वो उसकी अपनी एटीट्यूड होता है। जब तक आप उस नेचर को चेंज ना करो, जब तक आप अपने उस एटीट्यूड को चेंज नहीं करो, तुम्हारे अच्छे काम ज्यादा अच्छा हो सकता है, तुम्हारे अच्छा काम सबसे खराब भी हो सकता है। इसी के बेस कर जो तीन तरह के क्लासिफाई किया, यज्ञ दान तपह क्रिया, आप दान देते समय भी किसी को आप हेल्प करते हो, चैरिटी करते हो, लोगों का भला करते हो, पर उस भला करते समय भी हो सकता है आप पाप कमा रहे होते हो या बहुत पुण्य कमा रहे होते हो। डिपेंड करता है कि आप उसको करते समय क्या क्या फैक्टर का ध्यान रखते हो, कितने रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखते हो, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, क्या इंटेंशन है, किस लेवल का इंटेंशन है, उसके बदले में आप क्या चाहते हो, ये सब अलग अलग मैटर करता है। ये जरूर है, हम ये पूरे चैप्टर में ये इस बात की चर्चा नहीं करता है कि बुरा काम के भी तीन क्लासिफिकेशन है, उसकी चर्चा नहीं करता। बुरा काम तो बुरा है, उसको उसका कोई, वो ठीक है कि कोई माइल्ड होगा, कोई बड़ा हेवियर सेवियर होगा, वो अलग चीज है, पर बुरा काम है, शास्त्र उसकी चर्चा ही नहीं करता। जब हम कहते हैं कोई भी काम तीन प्रकार का, इसका अर्थ नहीं कि चोरी भी तीन प्रकार का, अच्छे काम तीन प्रकार के कर सकते हैं, तीन तरीके से लेवल से कर सकते हैं। जब आपको अच्छा काम करना ही है तो बेटर है कि बेटर इंटेंशन के साथ करें, बेटर एटीट्यूड के साथ करें। अगर आपको हेल्प करना ही है, क्यों किसी को ह्यूमिलिएट करके आप हेल्प करेंगे? पर लोग करते हैं, जो करते हैं वो थर्ड कैटेगरी का है। किसी को हेल्प करते समय अगर आपके अंदर एरोगेंसी आता है, लेने वाले को फील होता है कि आपने उसको ह्यूमिलिएट किया, उसके साथ आपने उसको आपने प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं किया, तो वो बेकार नहीं जाता, पर उसका, क्योंकि बेकार इसीलिए नहीं जाता है कि आपने किसी को हेल्प किया, कैसे भी हो किया, उसके काम आएगा, पर उसका जो आपको रिजल्ट मिलना था वो अप्रोप्रिएट आपके लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका मानसिक स्थिति स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है, उससे पता लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो किस लेवल का है। तो जो भी अच्छा काम हम करते हैं, जब उसको हम फलम अनभिसंधाय, किसी रिवॉर्ड का, किसी रिजल्ट का दिमाग में ना सोच के, एक्सपेक्टेशन ना करके अगर कोई करता है, वो मोक्षकांक्षी होता है, वो मोक्ष पाने के रास्ते में जाने वाला व्यक्ति बन जाता है। कोई भी अच्छा काम करे, दूसरों को हेल्प करना हो या खुद को हेल्प करना हो, सबसे ज्यादा जरूरी तो होता है व्यक्ति खुद को हेल्प करे। खुद को हेल्प क्या करे? खुद को हेल्प करने का नाम है तपस्या, दूसरों को हेल्प करने का नाम यज्ञ और दान। तपस्या हम क्या करते? हम अपने मन को, शरीर को, बुद्धि को प्यूरिफाई करने के लिए जो कुछ करते हैं वो तपस्या है। मन में कम से कम लालच हो, गुस्सा हो, बुरी चीजें, बुरी भावनाएं हो, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना हो, वगैरह वगैरह, जितने भी खराब चीजें हो सकते हैं, अज्ञान भी बहुत बड़ी बुरी चीज होती है, इग्नोरेंस, कोई चीज ना जानना भी बहुत बुरी। पतंजलि से लेकर कपिल तक ज्यादातर शास्त्रों में माना जाता है सारी बुराइयों का जड़ वो मानते हैं अज्ञान, इग्नोरेंस। इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, हम सोचते हैं लालच बड़ी बुरी बुरी बला है, गुस्सा करना बुरी बला है। वो कहते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो इंसान का अज्ञान है। अज्ञान होने पर बाकी चीजें बढ़ते हैं, अज्ञान कम होने पर बाकी चीजें अपने आप घटते हैं। जब मैं अज्ञान की बात कर रहा हूं, हो सकता है आप समझेंगे हम तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि हमने वहां से पढ़ा, ये पढ़ा, पीएचडी किया, डिलीट किया, हमने इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, पॉलिटिशियन है, हम कौन सा अज्ञानी है? हम उसकी बात नहीं कर रहे। अज्ञान मतलब जिस चीज को लाइफ में ये जितने सारे हमने काउंट किया, अब आप और 2-4 लाख काउंट कराएंगे, वो सब आपके पैसे कमाने के तरीके हैं, वो लाइफ जीने का तरीका नहीं है। आप एक लॉयर हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर कुछ भी हैं, तो वो पैसा आपके लाइफ में बहुत जरूरी है, पर लाइफ कैसे जिया जाए वो ये प्रोफेशनल नॉलेज नहीं सिखाते, ये तो आपको अपने आप सीखना पड़ेगा। प्राचीन भारतीय गुरुकुल में ये सब सिखाया जाता था, पैसा कमाने के तरीके भी और उसको खर्च करने के तरीके भी। खर्च करने का तरीका लाइफस्टाइल होता है, कमाने का तरीका प्रोफेशन होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जिसको आज हम ज्ञान समझते हैं वो जनरली 90% वो प्रोफेशनल होता है। और इसी का सबसे बड़ा प्रमाण आप देखेंगे तो जब हम कभी कभी सुपरस्टिशन की बात करते हैं तो हमने बहुत यहां भी बहुत बार डिस्कस किया है कि बड़े बड़े इवन साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, जो किसी आम अनाड़ी मूर्ख व्यक्ति से भी मूर्ख व्यक्ति के तरह ही हजारों सुपरस्टिशन को पाले रखते हैं। क्या लोग पूछते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो फिर गलत कैसे हुआ, वो इतने बड़े ज्ञानी आदमी है, वो साइंटिस्ट है नहीं है, वो साइंस प्रोफेशनल है, साइंस उसके लिए प्रोफेशन है, पैसा कमाने का, नाम कमाने का, सोसाइटी में जो भी, जो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ पैसा कमाते हैं, एक कमाने का एक जरिया है, पर अपने लाइफ में उसने साइंस की कोई भी थ्योरी अप्लाई नहीं किया, वो सब कुछ अप्लाई किया जो खानदानी से सीखता आ रहा था, जो एक मूर्ख व्यक्ति भी अप्लाई करता है वो भी अप्लाई करता है। तो लाइफ को कैसे जिया जाए उसके प्रोफेशन के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसका ज्ञान अलग से होना चाहिए, और उस मामले में हम कभी कभी कच्चे होते हैं। तो इसलिए अज्ञान का मतलब है जिस चीज को हम करते हैं उसके बारे में हमारा ज्ञान प्रॉपरली है कि नहीं है, वो है अज्ञान। तो जो भी मन की जो बुराइयां है, वो अज्ञान से लेकर के लोभ मोह क्रोध वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, ईर्ष्या वगैरह, उन सबको दबाने के लिए, नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए जो प्रोसीजर हम अपनाते हैं उसे कहते हैं तपस्या, खुद को ठीक करने के लिए। वो भी बोला तीन कैटेगरी के होगा, जरूरी नहीं दूसरों को हेल्प करना ही तीन कैटेगरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत तपस्या कर रहा हूं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता हूं इसीलिए कि मैं थोड़ा ठीक ठाक हो जाऊं तो लोग मुझे बाहवाही करेंगे, बहुत अच्छा आदमी कहेंगे, वो एक दूसरी कैटेगरी है। इसीलिए कि हो सकता है मैं इसीलिए कर रहा हूं, अपने आप को बढ़िया बना रहा हूं क्योंकि मैं भगवान का प्यारा बनूं, मुझे अच्छा बनना है, दैट्स इट, वो एक अलग कैटेगरी है। इसीलिए तो नहीं कि मैं अच्छा बनने के लिए कुछ कोशिश करता हूं, लोगों को लगे कि मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, अंदर से मेरी कोई इंटेंशन नहीं अच्छा बनने का, वो तीसरी कैटेगरी है। तो ये अच्छा बनने की कोशिश करना, पर इसके बैकग्राउंड में चलता है कौन सा रिवॉर्ड के लिए मैं काम करता हूं, क्या उसके बदले मुझे मिलेगा। फर्स्ट कैटेगरी, जो सिर्फ अपना ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ के सारे अच्छे काम करता है, खुद को अच्छा बनाना, दूसरों को भी हेल्प करना, यज्ञ दान तप जो भी बहुत सारी चीजें बताया करता है बिना किसी फल की इच्छा से, स्वार्थ भाव जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं, निष्काम भाव से, कि इसके बदले क्या। बड़ी कंफ्यूजन कहां है, हम सोचते हैं अगर मैं कोई इच्छा ना करूंगा इसके बदले क्या मिलेगा तो फल मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये नेचर है, कुछ भी हम करते हैं उसका अपना एक फल फिक्स्ड होता ही होता है, रिवॉर्ड फिक्स है, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो हमारे अंदर का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, जो जिसको आप माइंड और इंटेलेक्ट करते हैं वो दूसरे तरह का बन जाते हैं। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो एक दूसरे तरह का बन जाता है, आप करें ना करें रिजल्ट तो उतना ही मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। इसलिए इसमें कोई आपको घाटे का सौदा नहीं है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अब आप मैं कहूं कि अच्छा मुझे पता लग गया, एक्सपेक्टेशन ना भी करो रिजल्ट वही मिलने वाला है तो मैं करूंगा, क्यों, मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है क्योंकि मुझे पता है वो मिलेगा, ये उल्लू बनाने की तरीका होता है खुद को नहीं, इट शुड बी जेन्युइन, ये अपने आप होना चाहिए कि पता है कुछ होने वाला तो होगा, मैं एक्सपेक्ट क्यों करूंगा, मैं अपने आप को इल्यूशन में रखने की कोशिश करता हूं। ये ट्रेनिंग है, कोई भी अच्छा काम अगर ट्रेनिंग से होता है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। जब ट्रेनिंग लेना बुरी बात नहीं है, पर ट्रेनिंग जब तक धीरे 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 आपके नेचर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, कहीं कोने में भी आपका वो आर्टिफिशियलिज्म ना बचा रहे, तब वो रियल रियल बन जाता है। तो जब हम बिना किसी रिवॉर्ड के, एक्सपेक्टेशन के बिना अच्छा काम करते हैं, तो हम मोक्ष के पथ पर के, उस परमानेंट फ्रीडम के रास्ते पर चलने के लिए बन जाते हैं। और तत् तत् मतलब वो ब्रह्म, उस ब्रह्म को पाने की रास्ते पर चल पड़ते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदिते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ योज्यते। हमने सुना ओमकार परमात्मा का नाम है, अलग अलग एट्रीब्यूट को, उसके गुण कर्म स्वभाव को डिस्क्राइब करता है। तत् वो जो इनविजिबल अननोएबल, जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको तत् बोलते हैं। अंग्रेजी में दैट प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि नाउन को यूज करने के लिए आपको उसको पता होना चाहिए, और किसी को भी नहीं पता वो कैसा है, काला है, सफेद है, लंबा है, चौड़ा है, किसी को कुछ भी नहीं पता, इसीलिए उसका कोई नाम रूप रस गंध ना होने से वो प्रोनाउन है, तत् है। सत एग्जिस्ट जो करता है वो सत है, और सत को हमने ट्रूथ भी बोला, सत्य सच। ये सत्य भी इसी से बना। क्यों बना? क्योंकि सत का जो रियल मीनिंग है कि जो भी एग्जिस्ट करता है वो सत है। असत किसको बोलते हैं? जो इंसिडेंट हुआ है वही सच है, जो इंसिडेंट नहीं हुआ है वो झूठ है। जो एग्जिस्ट किया था, कर रहा है व करेगा, वो सब सच है। और हमारे संस्कृति में, कल्चर में या लैंग्वेज में सत शब्द, इसी कारण से ये जो वर्ड का जो मीनिंग का जो फ्लो है, वो फ्लो अलग अलग अर्थों में भी यूज होता है। आप कहते हैं सज्जन, सज्जन बोलते हैं ना देवियों सज्जनों, सत मतलब अच्छा, जन मतलब व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति। अंग्रेजी में ये अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी में कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। वो जेंटल क्या होता है? अच्छा आदमी। तो सत्जन सज्जन होता है। हम अच्छे में भी सत बोलते हैं, सद्भाविक। कोई चीज एग्जिस्ट करता है उसको भी सत बोलते हैं। साधु भावे, कोई आदमी साधु है, साधु का अर्थ बाबा नहीं है, गुड अच्छा। कोई अच्छा है उसको भी हम सत बोलते हैं। प्रशस्त कर्मणि, कोई काम बहुत अच्छा है उसको हम कहते हैं सत्कर्म। तो अनेक अर्थों में सत यूज होता है। जहां जहां अच्छाइयां जुड़ी होती है, जहां जहां सच्चाई जुड़ी होती है, वो सब सत के रूप में हम यूज करते हैं। सज्जन सत्संग बोलते हैं, है ना। सत्संग संग का मतलब क्या होता है? मिलना जुलना। सत्संग अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना, ये सत्संग है। अच्छी चीज के लिए मिलना जुलना, ये सत्संग है। तो जहां अच्छाई है वहां सत शब्द का यूज होता है, या जहां सच्चाई है वहां भी सत्संग का यूज होता है। और सच्चाई और अच्छाई में बड़ा बड़ा कनेक्शन होता है। कभी कभी बुरी चीजें अच्छा लगता हो, पर वो टेम्पररी होता है, लास्ट में जाकर के वो खराब बनता है। जो सच चीजें, जो जेन्युइन है, वो हमेशा अच्छा बनता है। तो इन सब चीजों में सत शब्द का प्रयोग होता है। अगला, यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। और इसी तरह कोई भी चैरिटी हम करते हैं, मैं जब चैरिटी कहता हूं उसका कोई सिर्फ ग्रॉस मीनिंग में मत लीजिए कि किसी को आपने डोनेट किया तो वह चैरिटी है, नहीं। किसी भी तरह का आप किसी को हेल्प करते हैं, फेवर करते हैं, वो सब चैरिटी में होता है। आप वाणी से भी किसी को, कभी कभी व्यक्ति को इतने दुख में होता है, सिर्फ आप उसको तसल्ली भी देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ा हेल्प होता है। बहुत सारे लोगों को इतना भी नहीं मिलता सुनने को, कोई जाए कंधे पर हाथ रख के कहे बेटे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ये भी बहुत बड़ी फेवरिंग होती है। तो किसी भी तरह से जो हम किसी के अच्छा काम करते हैं, किसी को मदद करते हैं, वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, किसी भी रूप में हम हेल्प करते हैं, वो सब चैरिटी है, वो सब दान है। मतलब आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी लाइफ में, वो सब दान है। तो ये दान हो, तप, मैंने कहा अपने आप को सुधारने के लिए जो भी एफर्ट आप करते हैं वो तपस्या है, और यज्ञ दोनों का, सोशल जो भी कम्युनल वेलफेयर है जिसमें ओवरऑल कम्युनिटी का भला होता हो वो यज्ञ है। जहां इंडिविजुअल हेल्प करते हैं वो चेरी दान हो जाता है। दान में यज्ञ भी दान का एक पार्ट है, दान भी यज्ञ का एक पार्ट है, जो खुद के लिए भला करते हैं तो ये तप है। तो ये सो यज्ञ दान तपह, इनको भी सत कहा जाता है क्योंकि ये अच्छा करने वाले होते हैं, इनको भी। और जो भी कर्म हम तदर्थीय करते हैं, उस चैरिटी के लिए कोई काम करते हैं, खुद को अच्छा बनाने के लिए कोई जब मैं अच्छा बनाने के लिए कहता हूं, मैं कोई इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि प्रोफेशनली कितना आप अपडेटेड होते हैं, जनरली हम ऐसे ही मीनिंग लेते हैं भाई अच्छा बनो, बच्चों को बोलते हैं तो अच्छा बनने में 90% इंटेंशन रहता है कि भी पढ़ लिख कर कुछ बन जा, कुछ बन जा मतलब पैसा कमाने लायक बन जा। तो हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, मैं बार बार इसको क्लैरिटी कर लाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत सारे चीजें हमारे डे टू डे लाइफ में हम एक पर्टिकुलर मीनिंग के साथ यूज करने के आदि हो चुके हैं। और इन सब से रिलेटेड कोई भी काम हम करें और तदर्थियम ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए हम कोई भी काम करें, या दूसरों को हेल्प करने के लिए कोई भी काम करें, खुद को हेल्प करने के लिए कोई भी काम करें, खुद को अच्छा बनाने के लिए, या कम्युनिटी की भलाई के लिए कोई काम करे, ये सब काम सत होता है, सत कर्म होता है। और आखिर लास्ट, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असादित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। आपने अगर सोचा कि मुझे किसी का हेल्प करना है, अगर आपने न्यू ईयर रेजुलेशन बनाया, वैसे दिख रहा है न्यू ईयर रेजुलेशन आज सत्संग में भी दिख रहा है, थोड़ी संख्या आज कुछ ज्यादा ही दिख रही है बहुत दिनों के बाद। तो अगर कुछ न्यू ईयर कोई आपने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कुछ कोशिश किया, आपने कोई एफर्ट लिया, या आपने कोई कम्युनिटी सर्विस करने के लिए ठाना, यज्ञ करने के लिए ठाना, वो अगर श्रद्धा के साथ नहीं है, अगर उसमें आपकी रेस्पेक्ट नहीं है, डिवोशन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, और आपके उसके साथ अपनी ह्यूमिलिटी नहीं जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो सब असत होता है, गंदा होता है। गंदा समझते हैं, बेकार। और क्यों गंदा होता है, वो कहता है न च तत् प्रेत्य न इह, वो यहां भी फायदा नहीं करेगा। आप ड्रामा करके कितने दिन तक मुस्कुराते रहेंगे, कभी ना कभी लोगों को पता लग जाएगा कि इसकी मुस्कुराहट जो है वो आर्टिफिशियल है। आपके सामने मान लीजिए आप आर्टिफिशियली मुस्कुराहट करते रहते हैं, जिसको देखते हैं मीठा बोलते हैं, पीछे जाकर के खूब सुनाते रहते हैं, फिर आपको लगेगा कि मैंने तो उसको मुस्कुराया, प्यार से बोला और वो मेरा बन गया। पता चला आप मुस्कुरा कर उसको उल्लू बनाकर आए, वो भी आपके पीछे गया, बोला देखो वो कैसा है। शुरू में दो चार महीने पता नहीं चलेगा, बाद में पता लग ही जाता है। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं अगर बुरे इंटेंशन के साथ करते हैं, पता लग ही जाता है। तो जो रिकॉग्नाइजेशन आपको चाहिए था वो सामने से तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा, किसको क्या फर्क पड़ा है कि आपको दो लाइन सुना दें, पर पीछे सबको पता होता है। तो जो आपका फायदा ना इस जन्म में मिलने वाला है, अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कहता है कोई भी काम करो दिल से करो। माँ बाप बोलते हैं कि दिल से करो। दिल से मतलब आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी ट्रस्ट उसके साथ हो। नहीं करना नहीं करना, अगर डिसाइड करना करना है तो 100% के साथ करो। कभी कभी हम बच्चों को बोलते हैं, मैं थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि मुझे समाप्त करना था, कि अब वो बच्चे आ जाते हैं, मां बाप ने प्रेशर किया कुछ काम करने के लिए, ये सीख लो वो सीख लो, आ जाते हैं तो आप जब प्रेशराइज होकर आते हैं क्लास में सीखते नहीं है, मूड इधर रहता है। तो मैं कभी कभी उनको बोलता हूं, देखो अब तुम अपनी मर्जी से आओ या मां बाप ने जबरदस्ती भेजा किसी भी कारण से आओ, आ तो गए, अब या तो तुम इसे एक घंटे दो घंटे का यूज करो या बेकार करो। स्मार्ट होगो तो तुम चाहोगे कि चलो जैसे भी हो, आ तो गया, जो भी मिलता है सीख लूं। और अगर बेवकूफ हो तो टेंशन भी पालो, दुख भी पालो और एक दो घंटा बर्बाद भी करो। बेटर है आ गए तो कुछ सीख कर जाओ। मतलब अगर आपके गले कोई चीज पड़ भी गया है, अगर आपको करना ही है, वंस आपने डिसाइड किया कि मुझे करना है, फिर आप उसमें इधर उधर की बात ना रखें, नेगेटिविटी ना रखें, पूरी पॉजिटिविटी के साथ करें, तो आपकी पर्सनालिटी में भी निखार आएगा, रिजल्ट भी अच्छा होगा। श्रद्धा उस ओवरऑल पॉजिटिविटी का नाम है। कुछ भी करें, वंस यू डिसाइडेड टू डू इट विथ प्योर डिवोशन, डू इट 100%, गिव योर 100%, तो फिर वो इस जन्म में भी फायदा करता है, अगले जन्म में भी फायदा करता है। अगर कहीं श्रद्धा नहीं है तो फिर वो काम बेकार होता है। इसी के साथ ये 17वां चैप्टर समाप्त हुआ। अगले संडे से फिर हम नए विषय के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।